सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारिक। भारत 19 से 22 मार्च तक दिल्ली में बिजली और विद्युत क्षेत्र को समर्पित एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी जिसका नाम भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। विकास को विद्युतीकृत करना, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना विषय के तहत आयोजित इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को उजागर किया जाएगा। साथ ही विद्युत क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों और उभरते अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्रवार संवाद को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और दुनिया भर में टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाना है। इस शिखर सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, नियामकों, निवेशकों, शिक्षाविदों, नवाचारियों और नागरिक समाज सहित हितधारकों का एक विविध समूह शामिल होगा। आइए इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन पर नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारिक के साथ और अधिक चर्चा करें। डॉक्टर पारिक, इस सम्मेलन का क्या महत्व है और ये विश्व भर में सतत ऊर्जा प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है?
सम्मेलन मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अलग अलग देशों साथ में मिलकर अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तब सभी देशों को फायदा होता है। इसका कॉस्ट कम होता है, साथ साथ इससे पोल्यूशन भी कम होता है, एमिशन CO2 का, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होता है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बात यह होती है कि अलग अलग देशों जब बात करते हैं सहयोग में काम करने का, तब इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, काफी काफी प्रश्न उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे होता है कि छोटा कंट्री है कि बड़ा कंट्री मुझे एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, और बड़ा कंट्री कहते हैं कि नहीं 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 देखो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल से क्या करना चाहिए, जिस तरह से हमने भारत, नेपाल और भूटान का और बांग्लादेश का साथ में ऊर्जा एक्सचेंज बढ़ाया, ये मेरा ख्याल से ये कैसे हुआ, क्योंकि पहले भारत ने ये बताया कि देखो हमारे यहाँ तो पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रेड है वो ट्रेड होता है, तो हर 15 मिनट में इसकी जो प्राइस भी इंटरनेट पे आती है, तो इससे पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी है इसमें। अगर जब ये ट्रांसपेरेंसी है और आप अन्य देशों को इसमें ये ट्रेड में इक्वल मेजर से भाग लेने की सुविधा देते हैं, तो तब जो प्रॉब्लम होता है जरा दूर होता है। बट वंस ऊर्जा का एक्सचेंज शुरू होता है, तब मेरा ख्याल से क्या होता है कि देश देखते हैं कि हमको इसमें कितना फायदा हुआ, एंड तब इसको ज्यादा ना ज्यादा जोर से प्रगति इसमें ज्यादा होती है और सभी देशों को फायदा होता है।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे इस 4 दिवसीय सम्मेलन में विद्युत क्षेत्र में निवेशकों से निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा है कि भारत में उत्पादन करने, निवेश करने, नवाचार करने और विस्तार करने का काम करें, उनसे निवेश करने का कहा है। उन्होंने एक लिखित संदेश दिया था जो कि केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने इस भारत विद्युत शिखर सम्मेलन में पढ़ा, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अपनी ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, और साथ ही उन्होंने वैश्विक समुदाय को भारत में निर्माण करने और भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री के इस आग्रह को और इससे ऊर्जा क्षेत्र में कितना निवेश बढ़ने की उम्मीद है?
नहीं, हमने देखा है कि जब पिछले 10 साल में सूर्य ऊर्जा में एकदम काफी प्रगति हुई है, एंड इसमें प्राइवेट सेक्टर ने काफी निवेश किया, बढ़ाया है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये निवेश थोड़ा इसकी जो इंटेंसिटी एंड प्रगति है वो गति धीरे धीरे कम हो गया है इसकी गति, एंड इसका कारण यह है कि जब हम अलग अलग टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं तो इसमें कभी कभी इम्बैलेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जैसा देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में अभी जो पावर एक्सचेंज है इसमें दोपहर में प्राइस 1 रुपये पर किलोवाट आवर होती है, बट रात को वो 10 रुपये पर किलोवाट आवर हो जाती है, क्योंकि हमने जनरेशन के साथ स्टोरेज को इतना महत्व नहीं दिया है। अभी ये सब हो रहा है. वंस दैट टेक्स प्लेस इन अ प्रॉपर वे, वंस हम जनरेशन एंड स्टोरेज को साथ साथ मिलकर बढ़ाएंगे, तब ये दूर है. लेकिन निवेश बहुत जरूरी है, क्योंकि एक किलोवाट कोल बेस्ड पावर प्लांट है, इसको हमको सूर्य ऊर्जा से रिप्लेस करना है, तो सूर्य ऊर्जा का मान 4 किलोवाट में हमको निवेश करना पड़ता है. सो निवेश उनका 4-5 गुना बढ़ जाता है. तो शुरू शुरू में निवेश जरूरत हमको काफी है, बाद में तो जब इसके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और कम हो जाती है, तो इससे उनके पास ज्यादा निवेश करने की क्षमता बढ़ती है. इसके साथ जरूर नहीं आती है, लेकिन शुरू में निवेश दुनिया से मंगवाने का, सभी को आमंत्रित करने का कि यहाँ आकर निवेश करो, ये बहुत अगत्य की चीज है.
जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है. इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर पारिक, देश के विद्युत क्षेत्र में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं अभी? एक तो आपने टैरिफ की बात की, प्राइसिंग का आपने बताया, इसके अलावा क्या प्रमुख चुनौतियां देखते हैं?
हमारे देश में अलग अलग राज्यों में बहुत अलग अलग क्षमता है. कहीं सोलर की पॉसिबिलिटी है, विंड की पॉसिबिलिटी कहीं है, और कहीं हाइड्रो की पॉसिबिलिटी है. अगर ये सब को हम कुछ ठीक से मिलाना है, तो एक काफी अच्छी ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत होती है. अगर हम ये भी देखें कि हम आजकल घर घर में सोलर रूफटॉप लगाने की सबको बात कर रहे हैं, अगर ये होता है एंड एक हर कंज्यूमर बिकम्स व्हाट दे कॉल प्रोज्यूमर, प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है, और इसको एक ये जो ग्रीन में डालना है सब इनकी एक्सेस जनरेशन, तो इसके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अच्छी तरह से कंट्रोल करना, बजाना इसको ठीक से, वो बहुत जरूरी बनता है. तो इसके लिए एक तो एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी चाहिए कि जिससे हम इसको ठीक से मैनेज कर सके, और दूसरी बात ये होती है कि हमको ये सब के लिए बहुत डिफरेंट अलग तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होती है.
थोड़ा और इसमें जानकारी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग तरीके का, ऑलरेडी जो हमारे पास सिस्टम है क्या वो पर्याप्त नहीं है?
नहीं, पर्याप्त तो है ही अभी, लेकिन फिर भी जैसी चाहिए इतनी नहीं है, क्योंकि हमने अभी 97-98% घरों में बिजली हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बिजली हम स्टेबल वोल्टेज के साथ और राउंड द क्लॉक नहीं पहुंचा सकते हैं. तो इसके लिए तो इसकी क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है, ये मेरा ख्याल से काफी अगत्य की चीज है कि हम हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको इतनी सशक्त कर दे कि हम सबको स्टेबल वोल्टेज और राउंड द क्लॉक और दे सकते हैं.
जी, 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का एक विषय है विकास को विद्युतीकृत करना और स्थिरता को सशक्त बनाना. भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक उद्देश्य रखा है, एक एम रखा है. आप कैसे देखते हैं इस सम्मेलन में, क्या जो लक्ष्य है उसकी भी पूर्ति की जा सकती है इसके थ्रू, यहाँ पे आ रहे जो लोग आएंगे, जो डिस्कशन होगा उसके थ्रू?
जरूर, मेरा ख्याल है जो इस सम्मेलन में कहीं अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, तो सबको अपना क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये बात की को सबको बताने का एक अवसर मिलेगा. यानी इससे पता चलेगा कि भाई हमको जनरेशन के साथ स्टोरेज भी बढ़ाना है, ये भी करना है, ये सब बात तो हमने करी है, ये सबको कुछ प्रकाश पड़ेगा. और इससे क्या होता है कि पॉलिसी मेकर्स को आइडिया आएगा कि इसको कैसे, इसका सुझाव क्या हो सकता है.
जी डॉक्टर साहब, एक अनुमान के अनुसार लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इस सम्मेलन के थ्रू आएगा, और उनमें से आपको क्या लगता है कौन से प्राथमिक क्षेत्र हैं, चाहे वो उत्पादन का हो, पारेषण का हो या भंडारण का हो, जो इस निवेश प्रभाव पर हावी रहेंगे, कौन से वो क्षेत्र इम्पोर्टेंट रहेंगे?
निवेश करने में ज्यादा जरूरी है एक तो रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने, वो तो काफी अगति की है. हम 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगानी है 30 तक, तो इसकी तो बहुत जरूरी है, ये मेरा ख्याल से काफी अगत्य है. लेकिन ये कब होगा, जब ये जो जनरेशन होता है वो सारा एब्सॉर्ब डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये सारा एब्सॉर्ब करे, तो इसके लिए हमने बताया कि जो बैलेंस करना है ये बहुत जरूरी है, एंड इसके साथ साथ वो ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाना है. तो इट इज नॉट एज इफ के एक एरिया अगत्य का है और इसमें ज्यादा निवेश करो और दूसरा इतना कम नहीं है, इसमें कम करो। ये सब बैलेंस्ड ग्रोथ की जरूरत है इसमें, कि सब में सब मिलकर एक साथ साथ सक्षम इसमें निवेश किया जाए।
आप पिछले वर्ष लाए गए शांति अधिनियम, जो कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किस नजरिए से देखते हैं, इनसे भारतीय विद्युत क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं या आ सकते हैं?
देखो, एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का अभी आजकल तो इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं भी क्षेत्र है जिसमें हाइड्रोजन का उपयोग बहुत अगत्य का हो सकता है। इट इज ए निश थिंग, बहुत ज्यादा इम्प्रेस इम्पैक्ट मेरा ख्याल से हाइड्रोजन की पूरी इकोनॉमी पर नहीं होगा, लेकिन जो अमुक अमुक क्षेत्र है इसमें हाइड्रोजन की इम्पोर्टेंस काफी है। तो एक तो हाइड्रोजन का हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ बनाने की जो कॉस्ट है इसको कम करने की बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए रिसर्च करने की जरूरत है और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर जो हम न्यूक्लियर की बात करें, तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, उसके जो डिमांड कर्व है, डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द अक्रॉस द डे बदलाता है कभी कभी। सो दोपहर में बहुत बढ़ता है, रात को कम होता है, रात को बढ़ता है। तो आजकल तो क्या होता है, पहले हम कोल पावर प्लांट्स को इसके साथ इसको बैलेंस करते हैं। अभी कोल पावर प्लांट्स को काफी कम 50% पावर फैक्टर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि कोल पावर प्लांट की कीमत बढ़ती है, और कोल पावर को ऊपर नीचे करना, इससे उसकी लाइफ टाइम भी कम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ता है। तो कई जगह माना जाता है कि हम जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन का, ये टेक्नोलॉजी हम बढ़ा सकते हैं, तो इसमें काफी फर्क होता है। आजकल कहीं भी ये टेक्नोलॉजी पूरी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत इज इम्पोर्टेंट, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर की शक्यता भी बढ़ गई है। हमारा पहले का प्लान क्या था कि हम फर्स्ट जनरेशन यूरेनियम के पावर जनरेट कर, फिर इसमें जो प्लूटोनियम पैदा हुआ इससे हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करें, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम जितना हम डालते हैं इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये प्रोड्यूस प्लूटोनियम से हम फिर आगे इस थोरियम को फिसाइल कर सकते हैं और इससे थोरियम रिएक्टर भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का है तो बहुत सालों से चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली अभी ऑपरेटिंग नहीं हुआ है। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कभी कभी पिछले कई सालों से मैं सुनता हूँ कि अगले साल क्रिटिकल होगा, लेकिन कुछ न कुछ इसमें नई टेक्नोलॉजी है और हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। बट नई दिशा में अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वगैरह भी थोरियम को फ्यूअल के हिसाब से फिसाइल बना सकते हैं, इससे हमें बिल्कुल थोरियम रिएक्टर बना सकते हैं। थोरियम हमारे पास काफी है, वी आर द लार्जेस्ट स्टॉक इन द वर्ल्ड ऑफ थोरियम फ्यूअल। सो थोरियम से हमको ऊर्जा में एकदम इंडिपेंडेंस मिलती है, यानी न्यूक्लियर पावर से बिल्कुल कार्बन एमिशंस जीरो हो जाता है। तो इसीलिए कोल को रिप्लेस करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, एंड इससे हमको काफी काफी फायदा होगा
जी,
क्योंकि इससे इंडिपेंडेंस भी आएगी एनर्जी ऊर्जा में, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, एंड एट द सेम टाइम वी विल हैव इनफ एनर्जी।
जी, आखिरी सवाल पारिक साहब, जो शिखर सम्मेलन हो रहा है 4 दिवसीय, इसके की टेक अवे देश के लिए क्या रहेंगे, विद्युत क्षेत्र के लिए, देश के लिए क्या रहेंगे, बहुत संक्षिप्त में अगर आप बता सके तो?
मेरा ख्याल से इससे बेस्ट ये होगा, कॉम्प्रहेंसिव बैलेंस प्लान गेट डेवलप, दैट लॉट्स ऑफ निवेश बढ़े, और इससे हमको पूरी स्ट्रेंथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम की बढ़े, वही हमारी आशा है।
जी डॉक्टर पारिक, आपने बहुत विस्तार से इस पूरे मामले पे चर्चा की और इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
माय प्लेजर।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में